हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी उपस्थित है। हम सभी कृतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं। आपने बहुत अल्प आयु में, जब आप फोर्थ क्लास में थे, तब से आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। पूरा ही लौकिक परिवार बाबा के इस ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण रूप से सहयोगी हैं। आपने ये ईश्वरीय ज्ञान अकोला महाराष्ट्र से प्राप्त किया। आप पिछले 29 वर्षों से संपूर्ण रूप से समर्पित होकर बाबा के यज्ञ की हर प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं। वर्तमान समय आप जयपुर, बापू नगर व आसपास के सेवा केंद्रों का कुशल संचालन कर रहे हैं। आपका यह अलौकिक नाम आदरणीय प्रकाशमणि जी, ऐसी महान विभूति से हम आज बहुत सुंदर विषय मेरा कर्म मेरी पहचान पर बहुत अच्छी क्लास करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। परम शिक्षक परम सतगुरु बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को दिव्य ज्ञान दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। आप सभी जो बैठे हो वो सब बाबा के बच्चे ज्ञानी तू आत्माएं ही हो, क्योंकि बाबा मिलन में वही आते हैं जो बाबा के ज्ञान को समझते हैं और जीवन में धारण करते हैं। तो सुप्रीम टीचर ने हमें ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है, जिस पढ़ाई से हमारे कर्मों में दिव्यता आती है। कर्म श्रेष्ठ तभी बन जाते जब हमारे कर्मों में दिव्य गुण भर जाते। कर्मों से ही मनुष्य साधारण बन जाता है, कर्मों से ही मनुष्य विशेष बन जाता है। सारा मदार कर्मों पर है और श्रेष्ठ कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि, कर्मों के गुह्य गति के दाता परम शिक्षक बाबा ही हमें सिखाते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें समझ मिली पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन से कर्म श्रेष्ठ है और कौन से कर्म भ्रष्ट है। बाहर वालों को तो ये पता ही नहीं है कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाए कैसे, और हमें बाबा ने ज्ञान अर्थात गहरी समझ दी है कि हर पल हर समय हम अपने कर्मों को कैसे ऊंचा उठाए, कैसे श्रेष्ठ बनाए। कर्म आत्मा के दर्शन करने का दर्पण है। कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। जब उसके कर्मों में दिव्य गुण भर जाते हैं, उसके कर्म पवित्र, शांत, धैर्यवत और प्रेम पूर्ण बन जाते हैं, तो उसे ही वही उसकी पहचान बन जाती है कि ये एक अच्छा व्यक्ति है या ये शिव बाबा का बच्चा है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जीवन की सुंदरता उसके कर्मों में ही है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो विनाशी है। एक बहुत सुंदर है, प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, नाम आपने भी सुना होगा, जो शकल से बहुत ही बदसूरत थे। अगर कोई उन्हें पहली बार देखे तो घृणा आ जाए, उनके विचार सुने बिना उससे कोई मिले तो उनको घृणा आ जाए। लेकिन सुकरात के विचार बहुत उच्च कोटि के थे। तो एक बार एक वृक्ष की शीतल छांव में सुकरात अपना चेहरा आईने में निहार रहे थे। उतने में उनका एक शिष्य आया और उसने सुकरात के इस क्रियाकलाप को देखा और उसे न चाहते भी कितना भी उसने भस्सक रोकने की कोशिश की पर उसे हंसी आ गई और उसकी हंसी को सुकरात ने देख लिया। तो सुकरात ने पूछा अपने शिष्य से कि क्यों हंसी आई। वो बोला नहीं, लेकिन बार बार सुकरात के पूछने से उसे झुकना ही पड़ा और उसने कहा बड़ी हिम्मत करके कि आप तो इतने बदसूरत हो फिर भी आईने में अपना चेहरा क्यों निहार रहे हैं, ये देखकर मुझे हंसी आई है। सुकरात ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं जो चेहरा आईने में निहार रहा हूं वो इसलिए नहीं कि ईश्वर को दोष दूं कि मुझे ऐसा बदसूरत क्यों बनाया, पर मैं इसलिए निहार रहा हूं कि मैं ऐसे कौन से कर्म करूं जो मेरे चेहरे की बदसूरती ढक जाए। उसका ये रहस्यपूर्ण उत्तर सुनकर शिष्य के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। तो उसने पूछा इसका मतलब क्या सुंदर व्यक्ति को आईना निहारना नहीं चाहिए, अपना चेहरा आईने में देखना नहीं चाहिए। सुकरात ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया नहीं, सुंदर व्यक्ति को भी अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं सदा अच्छे कर्म ही करूं जो मेरी ये सुंदरता कायम रहे, कोई ऐसे गंदे कर्म न करूं जो मेरी सुंदरता धूमिल हो जाए। इसका मतलब सुंदर वह है जिसके कर्म सुंदर है। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे इसलिए उनका ये जवाब बड़ा रहस्यपूर्ण है। सुख और दुख का आधार भी हमारे कर्म ही हैं। और बाबा ने हमें कर्मों के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का हर कर्म सुकर्म बन जाए और उसकी विधि, श्रेष्ठ विधि बाबा ने हमें बताई है, वो है श्रीमत। जो भी कर्म हम करें श्रीमत अनुसार करें। बाबा ने हमें सुबह से लेकर रात तक हर कर्म के लिए, हर कर्म इंद्रियों के लिए हमें श्रीमत दी है। हर कर्म करते हैं उस कर्म में प्लस बाबा की याद भर दो। एक साधारण कर्म, एक साधारण कर्म जो हम रोज करते हैं वो कर्म भी मेरा सुकर्म बन जाए, विशेष बन जाए, पुण्य का बन जाए, उसके लिए बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि कर्म सन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, क्योंकि कर्म सन्यास ही कोई बन ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कर्म योग अक्षर राइट है, क्योंकि जब तक ये कर्म इंद्रिया है कर्म तो करना ही है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। हम सारा दिन कर्म ही करते रहते, सारे संसार में सभी कर्म करते हैं, इसलिए संसार को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। या इसे कहते हैं ये संसार कर्म बंधन का संसार है। कर्मों के हिसाब किताब इस कर्म भूमि पर, इस कर्म क्षेत्र पर, इस रंगमंच पे हर आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। तो बाबा कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूं, तो क्या करता हूं, मैं तुम्हें श्रेष्ठ विधि बताता हूं कि कैसे तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और यही उस परम शिक्षक की, परम पिता की हमारे पर दया है, कृपा है कि जो इस असार निसार कलयुगी संसार में भी हम कैसे अच्छे कर्म करें उसकी श्रेष्ठ विधि श्रीमत हमें नित्य रोज समझाते हैं, आज भी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा कर्म बंधन से मुक्त थे। कोई भी कर्म हमें आकर्षित न करे, कोई भी कर्म हमें बंधन में न बांधे, पर उसके लिए बाबा ने कहा हमारी अवस्था योग युक्त हो। जब हम योग युक्त रहेंगे, कर्म से भी ऊपर उठकर योग करेंगे, तो हम कर्मातीत अवस्था के करीब आते जाएंगे। सुनहरी कर्म की डाल भी हमें बंधन में न बांधे, सेवा भी निस्वार्थ भाव से करें। तो इतना ऊंचा ज्ञान हमें स्वयं परमात्मा ने दिया, वो है कर्मों का ज्ञान। हर कर्म करते हैं तो बाबा ने हमें पढ़ाई पढ़ाई या पहला पाठ ही पढ़ाया, आत्मा समझना है। तो श्रेष्ठ कर्म करने का, जैसे कि ये एक शुरुआत है या स्टार्टिंग है, जैसे आप सबके पास मोबाइल है, जब मोबाइल को आपको प्रयोग में लाना है तो क्या करते हैं, स्विच, एक बटन होता है ऑन और ऑफ, तो हम ऑन करते हैं, उसके बाद उस मोबाइल को प्रयोग में लाते हैं। उसी प्रकार जब हम आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं या आत्मा को देखने का अभ्यास हमारा पक्का हो जाता है, आत्मिक स्मृति बन जाती है, तो ये जैसे कि ऑन हो गया। अब हमारे कर्म, अब हम इसे प्रयोग में लाते हैं, आपस में मिलते हैं, करते हैं, तो हमारे कर्म अब दिव्य बनते जाते। क्यों? क्योंकि आत्मा के सात गुण आत्मिक स्मृति आत्माभिमानी अवस्था में प्रकट हो जाते। जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो व्यवहार में दिव्यता, पवित्रता, बोल में मधुरता, व्यवहार में नम्रता के गुण आते हैं, क्योंकि आत्मा के सातों गुण होते हैं। तो बाबा ने कहा है आत्मिक स्मृति में रहकर हर कर्म करो और मुझे याद करते हुए हर कर्म करो, तो हर कर्म सुकर्म बन जाएगा, हर कर्म दिव्य कर्म बन जाएगा, विशेष बन जाएगा। हर कर्म खुशी खुशी से करो, खुशी से जो कर्म हम करेंगे तो एक तो हमें खुद को खुशी मिलेगी, और खुशी खुशी से कर्म करेंगे तो वो कर्म भी हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। किसी ने बहुत सारा काम किया पर खुशी से नहीं किया तो उसे खुद भी खुशी नहीं मिलेगी और वो कर्म दूसरों को भी खुशी नहीं दिलाएगा, पर खुशी खुशी से कर्म करेंगे तो खुशी से भरपूर होगी। जब हम आत्मिक स्मृति में रहकर कर्म करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस काम करते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, हम जितने भी बैठे हैं साधारण नहीं है, विशेष है, क्योंकि विशेष आत्मा ही इस मधुबन की नी पर आती है। बाबा की नजर पड़ी हुई आत्मा ही इस धरनी पर आती है। तो बाबा कहते हम भगवान के बच्चे, जहां भी हम उपस्थित रहते हैं वहां का वातावरण भी पॉजिटिव बन जाए। हम जिससे बात करें, हम जिससे मिलते हैं, जिसके साथ व्यवहार करते हैं, तो सामने वालों को ये महसूस हो कि हम भी भगवान के बच्चे हैं, और उनका सोच भी ऊंचा हो जाए। हमारी उपस्थिति से अगर कोई को ये महसूसता आती है तो ये हमारा कुछ परसेंट में पुण्य कर्म ही है। हमारे व्यवहार से अगर किसी को हिम्मत मिलती है, खुशी मिलती है, तो ये पुण्य कर्म ही है। और यही हमारी पहचान है कि हम ईश्वर की संतानें हैं। हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जब हम जाते हैं तो लोग हमें देखते हैं ये ओम शांति वाले हैं। और जब हमारे में से कोई चाहे वो सीट के लिए चाहे वो सामान के लिए जोर से बोलता है क्या आप ओम शांति वाले हो, वो हमें महसूस करा देते। लेकिन अगर हम प्रेम से बात तो कहेंगे जो है, अगर कोई हमारी सीट पर बैठा है तो हमें कहना तो पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अच्छे व्यवहार से और स्नेह से कहा तो वो कहेंगे कि वास्तव में ये भगवान के बच्चे हैं। तो हमारी पहचान भी इस दुनिया में भी जब हम कर्म में आते हैं, चाहे हम जहां भी रहते हैं जिस स्थान पे भी हमारे जो भी होते हैं, क्योंकि हम रहते हैं तो संपर्क में तो आएंगे, लेकिन हमारा व्यवहार हमारी पहचान दिलाता है। हमारे कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा कहते हैं आप ही मेरे बच्चे हो जो मुझे प्रत्यक्ष करेंगे, मेरे ज्ञान को भी प्रत्यक्ष करेंगे। जब काफी समय तक वो हमारा व्यवहार देखते हैं, कर्म देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि ये साधारण नहीं है, ये भगवान के बच्चे, मेरे कर्म ही पहचान बन जाते हैं और ये संदेश देने के बाबा के निमित्त बन जाते हैं। अगर हमें भूत आ जाए, विकारों रूपी क्रोध आ जाए, अभिमान आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? और हमारे भीतर दिव्य गुण आ जाए, धैर्यता आ जाए, नम्रता आ जाए, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? तो द्वापर युग से हम कर्म तो करते ही आए, क्योंकि कर्म इंद्रिया है, शरीर है, तो कर्म करना ही है। बस एक बाबा ही है जो कर्म के हिसाब किताब से परे है या सुख से परे है। जो भी हम कर्म इंद्रियों का आधार लेते, क्योंकि हमें अपनी कार है, अपना शरीर है, और वो निराकार है। शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो न्यारे और प्यारे बनकर कर्म करते हैं, इसीलिए वो कर्म के बंधन में नहीं फंसते। और ब्रह्मा बाबा ने हर कदम पर शिव बाबा की को प्रयोग में लाया, इसीलिए बंधन मुक्त बन गए। और हमें भी बाबा यही सिखाते हैं कि रहो संसार, कर्म तो करना ही है, अपने शरीर निर्वार्थ तो कर्म करेंगे ही, कर्म इंद्रिया है तो हर कर्म इंद्रिया से कर्म तो करेंगे ही, लेकिन वो कर्म करने की विधि क्या है? तो बाबा कहते कहीं भी रहो ट्रस्टी बनकर रहो, क्योंकि अगर कोई गृहस्थी है कहता है करे, बाल बच्चों वाला हूं, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, इन सब के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये सोच घटिया है, ये सोच अच्छा है। अगर ये सोचते कि मैं इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए कर रहा हूं, तो वो साधारण है। और हम बाबा के बच्चे क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर इस यज्ञ में हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं, और उनके श्रीमत अनुसार हम परिवार में रहते हुए इन सब की पालना कर्तव्य निभाते हुए भी हम बाबा को याद करते हैं, तो ट्रस्टी बनकर कर्म करते हैं, तो वो कर्म फिर श्रेष्ठ बन जाता है। गृहस्थी समझकर कर्म करेंगे तो कुछ मैल चढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा मेरा आएगा, और मेरा मेरा आने से तो मैला ही होंगे, और जब तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे। इसीलिए हमें बाबा ने श्रेष्ठ विधि कही, कहीं भी रहते हो लेकिन सदैव समझ कर रहो कि मैं ट्रस्टी हूं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ है ईश्वर का ही दिया हुआ है, चाहे मकान है, चाहे परिवार है, जो भी है, परिवार में बच्चे हैं, ये भी ईश्वर के दिए हुए फूल है जिनकी हमें पालना करनी है और उन्हें योग्य बनाना है, बाबा का मददगार बनाना है। इस भाव से जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। दूसरा, बाबा कहते बालक सो मालिक बनकर रहो। हम शिव बाबा के बालक है, वो है मालिक। हम उसके बच्चे हैं, उसके श्रीमत अनुसार चलते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। हर कर्म करते हुए बाबा ने श्रेष्ठ विधि हमें बताई। किसी भी कर्म की जब हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग, तो हम बाबा की याद से करेंगे। जब हम बाबा की याद से कोई कर्म शुरू करते हैं तो कर्म शीतलता से शुरू हो जाता है और समाप्त होता है तो भी हम बाबा को ही थैंक्स और शुक्रिया करते हैं जो ये कर्म अच्छा हुआ। ये विधि है कर्म करने की जो हमें भगवान ने बैठ सुनाई है, जिससे हमें हर कर्म में सफलता भी मिलेगी। अगर हमने शुरुआत भी बाबा की याद से की, समाप्ति भी, तो उस कर्म में सफलता ही सफलता भरी। और सफलता हो भी होगी भी तो बाबा उसे पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि वो कर्म जैसे बाबा को अर्पण हो चुका है, उसमें भी कोई न कोई राज छिपा हुआ होगा। तो परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ विधि सुनाई है, दिव्य ज्ञान दिया है कि हर कर्म ट्रस्टी बनकर करो, क्योंकि ये कर्म ही हमारे तकदीर की तस्वीर बनाते हैं। भाग्य का आधार, उज्जवल भाग्य का आधार हमारे कर्म हैं, जो संगम युग में बाबा हमें ऐसे कर्म सिखाते हैं जो बाबा कहते कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। हमारा लक्ष्य ही इतना सुंदर है, ये पढ़ाई इतनी ऊंची है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, संसार में जितनी भी पढ़ाइयां है उन सबसे ऊंची पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई, और लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों के फलीभूत ये ऐसे सुंदर बने या लक्ष्मी नारायण बने? तो ऐसे कर्म उन्हें किसने सिखाए थे? उस परम शिक्षक ने, मम्मा बाबा, जो हर कदम श्रीमत पर चलकर इस उच्च पद को प्राप्त की। वो पढ़ाई हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से हमारे भीतर गहरी समझ आती है और उस समझ के आधार से हम कर्म करते हैं। पहले हमें समझ नहीं थी तो हम देह समझकर कर्म कर रहे थे, गुस्से में, क्रोध में आकर बोल देते थे, क्रोध में आकर कुछ भी कह देते थे, तो कर्म हमारे विकर्म बन जाते थे क्योंकि समझ नहीं थी। जब से बाबा मिले और दिल से कहा मेरा बाबा और बाबा की शिक्षाओं को धारण के करने लगे, समझ आती गई, मुरली पढ़ते रहे, समझ आती गई और कर्मों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। जब आप बाबा के घर में आए पहली बार तो आप देखो आप कैसे थे। हर एक के भीतर कुछ न कुछ कमी तो है ही, लेकिन बाबा के बनने के बाद, कोई 30 साल से ज्ञान में चल रहे, कोई 20, कोई 5, कोई 4 महीने से भी, कोई 8 महीने से, लेकिन परिवर्तन आ रहा है क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा का है। ये हो नहीं सकता कि परिवर्तन आ न सके, क्योंकि एक्यूरेट ज्ञान है, स्वयं भगवान दे रहे हैं। अगर हम उसे ध्यान से सुनते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा में परिवर्तन आता है, आत्मा का कालापन निकलता जाता है, और आत्मा के भीतर ज्ञान और योग की शक्ति आती है, जिससे हमारे कर्मों में दिव्यता श्रेष्ठता आती है। क्योंकि परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं ऐसी ऊंची पढ़ाई, तो भाग्य बनाने का आधार भी ये कर्म ही है। ये जो समय चल रहा है, ये संगम युग, जो श्रेष्ठ भाग्य के बीज, श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का, यही श्रेष्ठ कर्म भाग्य बन के हमें प्रारब्ध मिलती है। बस हमें अटेंशन रखना है कि मेरा हर कर्म बाबा की याद में योग युक्त हो, मेरी दिन की शुरुआत भी बाबा की याद से हो। संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्मिक स्मृति का अभ्यास, क्योंकि ये संसार कर्म की खेती है, जितना करेंगे उतना ही मिलता है, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा, जितना करेंगे वही मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे हम वही पाएंगे। इमली बोई है इमली ही मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। चरिया वाले इसे इतना समझ नहीं पाते, इसीलिए वो एक बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि आज की दुनिया में, कई बार सेंटर पे भी पूछते हैं कि आज की दुनिया में जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो तो फल फूल रहे हैं, और जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, जो अच्छे हैं, उनके सामने और ही परीक्षाएं आती है, तो ये कैसे? पर ऐसा है नहीं। हर कर्म का फल समय अनुसार मिलता है, जरूरी नहीं तुरंत ही सामने आए, लेकिन ये नियम है कि जो बोया है वही मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ने जो ये सृष्टि का जो मालिक परमात्मा है, आप देखेंगे इस संसार में हर चीज जो है वो एक्यूरेट है, और बाबा ने भी हमें भेजा था ऐसे संसार में जहां हर चीज एक्यूरेट थी। पर धीरे धीरे जब हम नीचे नीचे आते गए तो हर चीज में धीरे धीरे रजो प्रधानता तमो प्रधानता आती गई, और कर्म कर्मों में भी कर्म भी नीचे नीचे गिरते गए। नहीं तो आप देखो इस संसार में वृक्ष को ही देखो, उसके पत्तों को देखो कैसे एक्यूरेट होते हैं। अनार को देखा है सभी ने, अनार की सेटिंग देखो, उसका रंग देखो, अगर हम उसे छील ले और दोबारा वैसा सेट करें, नहीं, कुदरत है ये, हर चीज एक्यूरेट है। तो परमात्मा ने जो कर्मों का ज्ञान दिया एक्यूरेट है, जो बोएंगे वही पाएंगे वही मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई बुराई करता रहे, बुरा करता रहे, उसे अच्छा मिलेगा। हाँ, जब तक उसका पुण्य है तब तक उसे अच्छा मिलता रहेगा, जिस दिन वो पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन फिर पाप उदय हो जाएगा। ये बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति बताई, इसलिए बाबा कहते बच्चे जन्म जन्मांतर के जो भी हमसे अनजाने में भी विकर्म हुए हैं उसको बाबा कहते योग बल से भस्म करो। बाबा को याद करते रहे कर्म योगी बनकर रहे तो जो पिछला खाता है वो भी क्या हो जाएगा, भस्म होता जाएगा, और जमा का खाता बढ़ता जाएगा। हमें कितना जमा करना है, जो पिछला भी खत्म हो जाए, वर्तमान भी चल जाए और भविष्य में भी हमारा पुण्य जमा हो जाए, तो इतने हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की बहुत सहज साधारण विधि बताई, कोई बहुत मुश्किल नहीं बताया, केवल अटेंशन देना है। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने भोजन के लिए कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, याद है किसी को? अगर खाना खाते समय बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी, और फिर क्या होगा, वो मजबूत बन जाएंगी और हमें ही हमारे ही आगे और विघ्न रूप बन जाएगी। तो बाबा ने ये मुरली ही पूरी कही थी भोजन पे। कोई बीमार होता है तो तो कहते हैं ये बीमार है, बहुत चिड़चिड़ करता है, इसे गुस्सा आता है, ये बीमार है। मतलब बीमार है इसलिए उसे गुस्सा आता है, अगर अच्छा है तो नहीं आएगा। तो बीमार है इसलिए वो बुराई उस पर हावी हो रही। तो आत्मा जितनी कमजोर है उतना उससे विकर्म होते जाते। द्वापर युग से हम ऐसा ही करते आए, समझ थी नहीं, देह भान में आए, हमसे विकर्म होते गए। पर जो हुआ हो गया, अब हमें बाबा मिला, अब हमें तीसरा नेत्र मिला, अब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाए। क्योंकि बाबा कहते हो तो अज्ञानतावश जो भी किया वो बाबा भी जानते हैं कि ज्ञान नहीं था, फिर भी औरों के हिसाब से हम जितनी भी बैठे हैं, प्लस माइनस तो कर्म होते ही आए, लेकिन फिर भी हमारा खाता औरों से अच्छा ही था। क्यों? क्योंकि हमें बाबा मिला। कुछ ऐसे कर्म हमारे थे जो हमें बाबा मिला और समय पे समझ मिल गई। हम भी थोड़ा गिरने ही लगे, ज्यादा नहीं गिरे, क्योंकि हम है तो सतयुगी आत्माएं। हमारे ओरिजिनल संस्कार तो कौन से है? हमारे आदि संस्कार, अनादि संस्कार तो पवित्र है ना। हम इतना नहीं गिरे, थोड़ा मैल चढ़ गया। जैसे आप देखना, कोई बाबा के घर में आते हैं, किसी को कोई व्यसन होता है, बुराई होती है, और जब वो आते हैं उन्हें बहने समझाती है कि ये हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये सिगरेट आदि पीना ये हमारा काम नहीं, क्योंकि हम सतयुगी आत्माएं हैं। और जब ये पॉइंट उस आत्मा को समझ में आती है तो थोड़े ही दिनों में उस बुराई को छोड़ देते। और अक्सर कहते हम ऐसे थे नहीं बहन जी, संग के रंग से या कोई कारण से बुराई हमारे भीतर आई थी, आई थी तो निकल भी गई क्योंकि ओरिजिनल नहीं थी। तो हम जो आत्माएं बैठी है, हमारे अच्छे कर्म थे, अच्छे थे, हमारा खाता जो बाबा मिला, पर समय अनुसार हम भी कलयुग में तो पहुंच ही गए। तो बाबा ने अब हमें समय पे समझ दी, ज्ञान दिया और श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताई। तो ये कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। और कर्म हम जो भी करते हैं, बाबा ने कहा मैं आत्मा इस देह में राजा हूं, ये कर्म इंद्रिया मेरी प्रजा है, मैं मालिक हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं इस देह की स्वामी हूं, ये कर्म इंद्रिया मेरे कर्मचारी है। तो कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर जब मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूं, ये समझकर कि मैं आत्मा भिन्न हूं और मैं कर्म कराने वाली हूं, ये कर्म इंद्रिया है, मैं जो चाहे कर्म करूं। तो जो बाबा ने श्रीमत दी उस अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म हमारे सुकर्म बन जाते हैं। जो श्रीमत अनुसार हम करते हैं वही कर्म हमारे सुकर्म बन जाते हैं। क्योंकि दिव्य ज्ञान के रत्नों से बाबा ने हमें भरपूर किया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि विशेष आत्माएं हैं जिनको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और हमें ये भी समझ मिली है कि जिसको भी मिला है वो उसके कर्म अनुसार मिला है। तो आप देखो, नहीं तो दुनिया में इससे ज्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, इसको इतना मिला, इसी में बुद्धि जाती है, फिर ईर्ष्या भी आएंगी, घृणा भी आएंगी, फिर कई बार तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि फलाना तो बहुत आगे जा रहा है और मैं नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया में, क्योंकि उनके पास ही ज्ञान नहीं है। और हमें बाबा ने कहा कि जो मेरे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे भगवान भी नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान भी कर्म के सिद्धांतों को नहीं तोड़ते, वो भी कर्म के सिद्धांत अनुसार ही चलते हैं। भगवान भी कहते श्रेष्ठ कर्म करो, विधि बता रहा हूं उसी अनुसार मिलेगा, बिना करे नहीं मिलेगा। मिलेगा बहुत, पर कब मिलेगा? जब मैंने उसका कहना माना होगा तो, आज्ञाकारी वफादार बनकर रहे हैं तो भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए जो भाग्य में नहीं उसे भगवान भी नहीं दे सकते। वो भी कहते हैं तकदीर बनाने वाला बाबा तकदीर बनाते हैं, बनाने की विधि बताते हैं, और तकदीरें बनती जाती, पर तकदीरें एक जैसी नहीं बनती। बनती तो सबकी नंबर वार है, पर बाबा तो कहते सभी बनाओ, कौन सी तकदीर, सब क्या कहेंगे, हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे? तो बाबा कहते सभी बनो, लेकिन बनेंगे कैसे सब नंबर वार, क्योंकि पुरुषार्थ हर आत्मा का अपना अपना है। एक छोटी सी कहानी है बहुत अच्छी, जो बचपन में सुना करते थे, स्टोरी है, कहानी है। एक ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक ही बेटा। ब्राह्मण थे जाति के, पर बहुत गरीब थे, कुछ भी नहीं था, न पहनने को, न खाने को, न रहने को, दर 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 घूम रहे थे, भटक रहे थे। जाति के ब्राह्मण थे पर भटक रहे थे, गरीब थे। स्टोरी है, शंकर पार्वती जी ऊपर से जा रहे थे, तो पार्वती जी ने शंकर जी को कहा कि देखो ये ब्राह्मण हैं और नीचे कैसे चल रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ दो स्वामी, इन्हें कुछ दो, फिर भी ये ब्राह्मण हैं। आप शंकर जी ने कहा देवी इन्हें मैं दूंगा भी ना, ये ले नहीं पाएंगे। पर पार्वती जी ने, कहानी है जिद की, आपको देना ही होगा। वो शंकर जी ने समझाया, फिर आखिर उन्होंने भी सोचा ठीक है चलो देते हैं। तो उन तीनों के सामने शंकर पार्वती प्रकट हुए और बोला तीनों को वरदान मांगो, क्या चाहिए जो चाहिए मांगो। ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी और बेटा, तीन वरदान मिले, तीनों मांगो जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। बड़े खुश हुए। ब्राह्मण ने कहा कि पहले ब्राह्मण जो पत्नी थी उसे कि आप मांगो, अब देखो उसने क्या मांगा, क्योंकि भाग्य में नहीं था। उसने कहा हे भगवान मुझे संसार की सबसे सुंदर स्त्री बना दो। अब भगवान ने कहा तथास्तु, वो सुंदर स्त्री बन गई। उतने में राजा उधर से आया, उसे देखकर पकड़कर बिठा के ले गया। अब वो देख रहा था, उसके ब्राह्मण देख रहा था, तो ब्राह्मण की अब बारी आई। शंकर जी पार्वती जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, बोले अब आप मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा, उसे देखकर बड़ा गुस्सा आया कि मेरी पत्नी ने क्या किया। उसने कहा हे भगवान इसे बदसूरत कुरूप बना दो। हो गया, अब वो कुरूप बन गई। राजा ने उसको पकड़ के नीचे डाल दिया। बेटा सब देख रहा था। बेटे ने कहा भगवान जी हम जैसे थे वैसे ही बना दो। और वो जैसे थे वैसे ही बन गए। मतलब भगवान दे रहे थे, लेना नहीं आया, क्योंकि भाग्य में नहीं था, कर्मों के बीज नहीं बोए। तो पार्वती जी को कहा कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि भले ही ब्राह्मण हैं, पर वो कर्म नहीं किए, इन्हें नहीं मिल सकता। मतलब यही है कि श्रेष्ठ कर्म किए बिना हमें भाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा हमें भाग्य तो देते ही है, लेकिन साथ में श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाते हैं। एक तरफ भाग्य के गुण गाते हैं, ताज तिलक तख्त बच्चों का अधिकार है। और एक तरफ बाबा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए रोज हमें शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म होगा हमारा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अटेंशन रखना है और श्रेष्ठ कर्म करने का बीज कौन सा है, हमारी स्मृति। देखो जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म करेंगे। सबसे पहले मन में आता है विचार, फिर हम कर्म करते हैं, कर्म बाद में करते हैं। तो विचारों को श्रेष्ठ बनाना है, हमारे थॉट्स को ऊंचा उठाना है। इसीलिए हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं मुरली, जो मुरली से हमारी सोच ऊंची बन जाती है। लेकिन हमारे विचारों को भी ऊंचा बनाने के लिए हमारी स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा हमें बीज का ज्ञान, बीज रूप बाबा हमें बीज का मूल ज्ञान देते और सबसे पहली स्मृति देते, स्वस्मृति, स्वरूप में टिक जाओ। और ऐसे टिक जाओ जो आपको कोई देखे वो भी स्वरूप में टिक जाए, ये है पुण्य कर्म। तो स्व की स्मृति दी बाबा ने, सबसे पहले हमें स्व स्मृति दी कि एक शुद्ध आत्मा हूं, आत्म स्मृति में रहो, ईश्वर की संतान हूं। बाबा ने हमारी स्मृति को बदल दिया, तभी कहते हैं संसार स्मृति विस्मृति का खेल है। हमें सब विस्मृति हो गई थी, हम ये समझते थे मैं फलाना, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, अब मैं बड़ा हूँ तो मेरी चाल ढाल बोल सब कैसा होगा, अभिमान वश। बाबा ने कहा नहीं, कुछ नहीं, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, पवित्र हो, शांत स्वरूप हो। अब मेरी स्मृति ही बदल गई, अब मेरी जैसी स्मृति बदल गई मेरी वृत्तियां बदलने लगी, मेरी भावनाएं बदलने लगी। अब मेरे भीतर आया मैं भी शुद्ध आत्मा, ये भी शुद्ध आत्मा, इसका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। अब मेरी वृत्ति में शुद्धता आई और जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि मुझे नजर आने लगी। पहली सृष्टि में बुराइयां नजर आती थी, अब मुझे अच्छाइयां नजर आने लगी कि क्योंकि मेरी वृत्ति पॉजिटिव है। अब ये भी ईश्वर का बच्चा है, हर एक में कोई न कोई विशेषता है। अब मेरी सृष्टि बदलने लगी, मेरी दृष्टि बदल गई, मेरी दृष्टि आत्मिक हो गई। और जब मेरी दृष्टि, मेरी सृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति बदल गई, लास्ट है मेरी स्मृति बदल गई। तो कर्मों को अगर मुझे श्रेष्ठ बनाना है तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनो। और रोज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, स्वमान दिलाते हैं, स्वमान में रहो, अपनी स्मृति को ऊंचा रखो कि मैं कौन हूँ। एक छोटी सी स्मृति, मैं ईश्वर की संतान हूँ। आप देखो ऐसा सोचने से कितनी खुशी होती है, और ये भी सब ईश्वर की ही संतानें हैं। मैं भी विशेष आत्मा हूँ और ये भी विशेष आत्मा है, जैसा भी है ये भी बाबा का बच्चा है। अब ये मेरी वृत्तियां होने से मेरी सृष्टि, मेरी दृष्टि और मेरी कृति भी बदल गई। तो मेरे कर्मों में भी सुंदरता तब आती है जब मेरी स्मृति अच्छी। इसलिए बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है ना, जैसे दुनिया में आजकल कहते हैं वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो, लेकिन ये नहीं समझते हो कि सबसे बड़ा तो मन, मन का पोल्यूशन है। इसको ठीक कर लो ना तो ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वृत्तियां ठीक नहीं है तो कहीं भी कचरा डालेंगे कितना भी करो, वृत्तियां ठीक नहीं है तो वाइब्रेशंस भी ठीक नहीं है। तो बाबा ने हमें बीज का ज्ञान दिया, सबसे पहले हमारी स्मृति को बदला कि शुद्ध आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा घर कौन सा है, परम धाम है। फिर बाबा ने कहा स्वरूप कोई ये नहीं है जो दिखाई दे रहा है, जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब विनाशी है, तीसरी आंख से देखो वो अविनाशी है। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो स्व स्वरूप को हमने जान लिया, स्वधाम को जान लिया, हम ये समझ रहे थे मेरा घर मेरा घर मेरा घर, अब पता पड़ा ये घर तो एक जन्म का है, मेरा घर तो परमधाम है, ये मेरे हमें पता पड़ा मेरा तो एक शिव बाबा है। ये जो भी है रिश्ते नाते परिवार ये भी सब कर्म के हिसाब से मिले हैं। तो अब देखो हमारी स्मृतियां बदलने लगी, घर की स्मृति, फिर स्व लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है। कई लोग समझते हैं खाओ पियो मौज करो यही जीवन है, लेकिन हमें बाबा ने कहा नहीं, लक्ष्य ऊंचा है, हमें ऐसा बनना है। तो बाबा ने हमें लक्ष्य भी ऊंचा दिया, और जब लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण भी ऊंचे, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। फिर लक्षण भी हमारे अंदर बाबा ने कहा आत्मा के साथ लक्षण है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। तो बाबा ने हमें ये लक्षण दिए, फिर बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्र भी बताया कि क्या थे क्या बन गए, थे नहीं ऐसे बन गए, कैसे बने, जन्म मरण के चक्र में आते 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 फिर हमारे कर्मों में ऐसे विकार आए, रावण आया भूत आए और कर्म विकर्म बनते गए बनते गए। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा, अब जो भी हुआ अब तो मैं स्वयं आ गया, अब मैं सिखा रहा हूं, अब ऐसे कर्म करो, देखो तो ऐसा देखो, घर में रहो तो ट्रस्टी बनकर रहो, रात को सोते हो तो बाबा को याद करके बाबा को अपना समाचार सुना के फिर सो, खाना खाओ तो कैसे याद में बना करके याद में खाओ। अब बाबा ने हमें हर कर्म के लिए मनसा, मनसा के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी, मनसा पावरफुल होनी चाहिए, शुभ भावना शुभ कामना। फिर बाबा कहते वाचा, वाचा कैसी होनी चाहिए, सुखदाई, जो दूसरे को सुख मिले वाणी से, किसी को हिम्मत मिले, किसी को शांति मिले, किसी को खुशी मिले। तो बाबा ने हमें कहा मनसा भी शुभ हो, वाणी भी सुखदाई हो, और कर्म फिर कल्याणकारी हो। कल्याणकारी बाबा हमें कल्याणकारी कर्म सिखाते हैं, जो ही श्रेष्ठ कर्म, जिन कर्मों के फलीभूत हम मनुष्य से देव बन जाते हैं, और यही कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, और बाबा को प्रत्यक्ष करने के पहले हम स्वयं भी कर्मों से ही सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। आप देखेंगे जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सबकी दुआएं मिलती है, हम अच्छे कर्म करते हैं सुखदाई बनते हैं, जब हम सुखदाई बनते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और कर्म अच्छे है तो हम मास्टर सुख के सागर बन जाते, तो हमारा पुण्य भी जमा होता। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। बाबा ने हमें रोज बताया, आज भी बाबा ने कहा बंधन में नहीं आना, यही तो जीवन जीने की कला है, ये कर्म भी करना है, दुनिया में भी रहना है, निभाना भी है, कहीं भी रहो, लेकिन ये करते हुए भी डिटैच रहो। और ये कब होगा, मेरे सर्व संबंध बाबा से है, मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से है, मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान बाबा को है। बस ये विधि जिसने सीख ली उसके कर्म ऑटोमेटिक ही अच्छे बनते जाते हैं, और उनसे जितनों को प्रेरणा मिलती है तो वो दुआएं उनके पास जमा होती जाती है। एक परिवार में एक बहन ही ज्ञान में आती है, धीरे धीरे आप देखो धीरे धीरे उनके परिवार में भी क्या होता है, उन सबको लगता है कि तो बहुत अच्छी बनती जा रही, पहले इतना गुस्सा करती थी अब तो ये बहुत शांत है, चलो हम भी जाते। फिर धीरे धीरे पड़ोसी भी जाते, फिर परिवार आ जाता। तो ये कर्म जो है वही प्रत्यक्ष हमें भी करते, और बाबा भी कर्म, हम बच्चों के कर्मों से प्रत्यक्ष होते। जब ही तो लोग कहेंगे ये साधारण नहीं है, और अभी कई समझते भी है कि भाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से तो साधारण नहीं है, बाबा कहते ना अल्लाह लोग हो, सत्युगी आत्माएं हो, ये कैसे दिखाई देगा सबको? ये हमारे कर्मों से। और उसके लिए बाबा रोज हम बच्चों पे मेहनत करते हैं, हमारी सोच को ऊंचा उठाते हैं, रोज हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, योग युक्त होना सिखाते हैं, जिससे ही हमारे कर्मों में दिव्य गुण झलकते हैं। और वो दिव्य गुण झलकना ही लोगों को वंडर लगता है। बाबा कहते ना एक एक कर्म इंद्रियों को बाबा क्या कहते, कमल पुष्प समान, हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल का मतलब क्या है? मतलब है पवित्र। तो जितना जितना हमारे भीतर पवित्रता आती जाएंगी, जितना हम योग युक्त होकर कर्म करते हैं, उतना हम श्रेष्ठ कर्म भी होंगे और कर्म के बंधन योग युक्त अवस्था से टूटते जाएंगे। कई बार बाबा कहते ज्ञान और योग की कैंची से कर्म बंधन को काट दो, क्योंकि ज्ञान युक्त योग युक्त होकर, ज्ञान समझ है, योग बाबा की याद है, जिससे हमारे कर्म दिव्य और श्रेष्ठ बन जाते। तो हम अपने बाबा मिलन मनाया, बाबा ने हमें इतनी रत्नों की थालियां भर भर के दी है, इतनी हमें बाबा ने, इतना हमें बाबा ने धनवान बनाया है। तो हम भी ये संकल्प करके जाए कि हम नित्य श्रेष्ठ कर्मों के ही बीज बोए, देखे भी किसी को तो वाइब्रेशन हमारे। दादी जानकी जी एक बार क्लास करा रही थी, दादी ने कहा था हमारी दृष्टि कैसी हो, दादी कहती है दृष्टि महा सुखकारी हो, जिस पे पड़े वो शीतल और शांत हो जाए। तो दृष्टि ऐसी हो, कृति ऐसी हो, बोल ऐसे हो, तो बाबा हमें ये शिक्षाएं देते हैं। तो हमें संकल्प लेके जाए कि हम अपने पर अटेंशन रख के कर्मों के गुह्य गति के दाता को सामने रखते हुए, हर श्रेष्ठ कर्म करते हुए उच्च पद के अधिकारी बन के अपने भाग्य को ऊंचा उठाए। ओम शांति।
आज
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, आपने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे जीवन का आधार है और हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कैसे